शिखा, तेरी भाभी कहाँ है? अंदाजा था उसे, फिर भी पानी पीते हुए पूछ लिया। और उसके इस सवाल पर शिखा और निशा दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। भैया, भाभी तो आपके जाने के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं तो मम्मी के कहने पर उनके लिए खाना भी रूम में ही ले गई थी, पर उन्होंने घर में बने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। बाहर से बहुत सारा खाने का सामान मंगवाया और वही खाया। बोलते हुए हल्की उदासी शिखा के चेहरे पर उभरी थी, और उसकी बात सुनकर माधव जहां कुछ हैरान हुआ, वहीं उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव भी उभर आए। उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया ही था कि अनुपमा जी ने उसे टोक दिया। माधव, सुमन को कुछ मत कहना। नया घर है, नया माहौल है, नए लोग हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही उन्हें। फिर आज ही अपने घर से आई है, दुखी होंगी, अकेली रहना चाहेंगी, घर का खाने का मन नहीं होगा, इसलिए बाहर से मंगवा लिया। पर इन सब बातों के कारण उन पर नाराज मत होइएगा। अभी आपके रिश्ते की शुरुआत ही हुई है, अभी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो रिश्ता खराब होगा, इसलिए धैर्य से काम लीजिए, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उनकी बातें सुनकर माधव ने पलटकर एक नज़र उन्हें देखा और फिर वापस सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए। रूम में पहुंचा तो वहां का हाल देखकर उसका सर चकरा गया। फर्श पर बड़ा सा ट्रॉली बैग खुला रखा था, जिसमें से आधी चीजें बाहर बिखरी हुई थी। पूरे बेड पर कपड़े फैले हुए थे, और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सुमन अलग अलग तरह के कपड़ों को खुद पर लगाकर देख रही थी, जिसमें साड़ी से लेकर शॉर्ट्स और वन पीस तक सब कुछ शामिल था। माधव तो अपने कमरे का ये हाल देखकर स्तब्ध रह गया। जबकि कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही सुमन दरवाजे की ओर पलट गई थी, और माधव पर नजर पड़ते ही उसके लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई थी। माधव, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। देखो तो, मम्मी पापा भैया भाभी ने मुझे कितनी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट की हैं। बताओ, ये कैसी लग रही है मुझ पर? ये वाली कैसी लग रही है? ये वाली तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, कितनी प्यारी लग रही है ना मुझ पर। सुमन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो थक कर आया है। वो तो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ बेड पर बिखरे कपड़ों को एक एक करके खुद पर लगाते हुए उसे दिखाने लगी थी, और खुद ही तारीफ भी कर रही थी। माधव कुछ पल भावहीन सा उसे देखता रहा, फिर फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, आप पर तो सभी कुछ अच्छा लगता है, पर आपने ये रूम का क्या हाल बनाया हुआ है? माधव की निगाहें एक बार फिर रूम में भटकी, जबकि सुमन अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को बेड पर फेंकते हुए तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ गई। अरे, रूम की चिंता छोड़ो और इधर आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए भी कितने अच्छे कपड़े लाई हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेंगे। पता है, पूरा एक दिन लगा मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करने में। बोलते बोलते सुमन उसे बेड के पास ले आई और बैग से कपड़े निकालकर उसे दिखाने लगी। ये तो देखो, ये बाहर जाने के लिए है, ये घर में पहनने के लिए है, और ये देखो कितनी सुंदर जैकेट है, ये हुडी भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद आई तो मैंने ले ली, और ये कपड़े तो मैंने खासकर हमारे घूमने जाने के लिए खरीदे हैं, वो भी अपने कपड़ों से मैचिंग। क्या कुछ नहीं खरीदा था उसने माधव के लिए, शर्ट पैंट टी शर्ट से लेकर जैकेट तक सब कुछ ले आई थी, और सब कुछ एक से बढ़कर एक था, देखने से ही उनकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। माधव इतने कपड़े देखकर हैरान था। सुमन, इन सब की क्या जरूरत थी, कितने पैसे बर्बाद कर दिए आपने इन पर बेवजह ही। माधव की बात सुनते ही सुमन के चेहरे के भाव बदल गए, अकड़ते हुए उसने मुंह बना लिया। मेरे पैसे थे और मुझे अपने पति पर खर्च करने का मन था, तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है, इतनी अच्छी शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी दी है भगवान ने तुम्हें, पर तुम अपना ख्याल ही नहीं रखते, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस तक नहीं, ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है तुम्हें, और मैं तो तुम्हें सब सिखाने वाली हूँ, देखना मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि देखने वाले को विश्वास ही नहीं होगा कि तुम वही पहले वाले माधव हो। सुमन उसे बदलने के ख्याल से एक बार फिर मुस्कराई, पर माधव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सुमन, आपकी बात ठीक है, पर हम एक मैकेनिक हैं, इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकते, बेवजह ये कपड़े खराब हो जाएंगे, तुम अपना वो मैकेनिक वाला काम छोड़ दो, मुझे पसंद नहीं है, और तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करता, मुझे तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड्स को बताने में भी एम्बेरस्ड फील होता है। बताओ, मैं एक एमएनसी में जॉब करती हूँ और मेरा पति एक मामूली सा मैकेनिक है, बोलने में भी कितना गंदा सा लग रहा है, अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को भी पता चला कि मेरा पति एक मैकेनिक है तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी, और उन सबको मेरा मजाक उड़ाने और मुझे नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम ये मैकेनिक वाली जॉब छोड़ दो, और वो रात को होटल जाना भी बंद कर दो, अगर रात को भी तुम काम करोगे तो मैं कब तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, मैंने पापा से बात की है तुम्हारे लिए, उनकी बहुत जान पहचान है, वो किसी बढ़िया से होटल में तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, और अगर तुम्हें किसी के अंडर काम नहीं करना तो बता दो, मैं पापा से कहकर तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा दूंगी, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट भी करेगा, मेरे स्टेटस से भी मैच करेगा, और मैं अपने दोस्तों के सामने प्राउडली कह सकूंगी कि मेरा पति एक रेस्टोरेंट का मालिक है, कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा फिर तुम्हारा उन पर, और मेरी इमेज और भी बढ़िया हो जाएगी। सुमन ने तो जैसे पूरी प्लानिंग कर रखी थी, वो भी अकेले। माधव उसकी बातें सुनकर जितना हैरान था, उतने ही अजीब से ख्याल उसके मन में आने लगे थे। ना चाहते हुए भी राधिका की कही बात उसके मन में कौंध गई और दिल
अजीब सा हो गया। माधव को किन्हीं ख्यालों में खोया देखकर सुमन ने सर झटकते हुए आगे कहना शुरू किया, अच्छा तुम ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं सोच रही थी कि इस अलमारी को बदल लेते हैं, एक तो बहुत पुरानी है और मॉडल भी कितना पुराना हो गया है। आउटडेटेड चीज अपने रूम में रखना मुझे पसंद नहीं है और इस छोटी सी अलमारी में मेरा सामान भी पूरा नहीं आ रहा। वैसे तो मैं सोच रही थी कि जो अलमारी पापा ने मुझे दी है वही ले आऊं, पर तुम्हारा रूम बहुत छोटा है तो कोई दूसरी अलमारी खरीद लेंगे। अलमारी के अलावा कुछ और चीजें बदलनी है मुझे, तो मैं सोच रही थी कि रूम का रेनोवेशन करवाकर उसे अपने हिसाब से ढाल लूं। अब मुझे भी यहीं रहना है तुम्हारे साथ, तो अपने अकॉर्डिंग बदलाव तो करवाने होंगे मुझे। मैंने तो पापा से बात भी कर ली है, वो सब करवा देंगे। सुमन, इन सब की क्या जरूरत है? अगर आपको कुछ बदलवाना है तो मुझसे कहिए ना, अपने पापा को क्यों कह रही हैं? माधव खुद्दार था इसलिए उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। पसंद तो उसे ये भी नहीं आया था कि सुमन सारे फैसले अकेले ही ले रही है, मतलब उसकी मर्जी की उसकी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं है। माधव की बात पर सुमन ने तपाक से जवाब दिया, पापा की बहुत जान पहचान है, वो मेरी पसंद भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो डिस्काउंट में सब करवा देंगे। और मुझे एक दो चीज थोड़े बदलनी है जो तुम कर दोगे, मुझे तो इस बोरिंग से रूम को अपनी तरह एक्साइटिंग बनाना है जो तुमसे नहीं होगा, इसलिए वो काम तुम मुझ पर ही छोड़ दो। जब तक हम वापस लौट कर आएंगे देखना हमारा रूम ऐसा बन जाएगा कि तुम पहचान भी नहीं सकेंगे। वापस आएंगे? कहाँ से वापस आएंगे? कहीं जा रहे हैं क्या हम? माधव ने चौंकते हुए सवाल किया। जाने अब क्या नहीं पता था उसे। उसका सवाल सुनकर सुमन ने अपने सर पर हाथ दे मारा।
ओ शिट, मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। हम परसों शिमला के लिए निकल रहे हैं। भाई ने हमारी शादी के गिफ्ट में एक हफ्ते का शिमला का हनीमून पैकेज गिफ्ट किया है। उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर दी हैं और परसों से हमारा 1 वीक हनीमून ट्रिप शुरू होने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है, मैंने तो कब से सोचा हुआ था कि हनीमून पर अपने हस्बैंड के साथ शिमला जाऊँगी, और अब जब हम वहाँ जाने वाले हैं तो मैं तो खूब इन्जॉय करने वाली हूँ। मैंने तो पहले से ही सारी प्लानिंग भी कर ली है कि कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या पहनेंगे। एक बार फिर उसके फैसले में सिर्फ वही थी और फिर भी वो बहुत खुश थी, जबकि माधव फटी आंखों से अचंभित सा उसे देखता ही रह गया था। उसके चेहरे के विचलित भाव और माथे पर पड़ी सिलवटें उसकी परेशानी जाहिर कर रही थीं। सुमन की खुशी और एक्साइटमेंट देखकर वो अपनी बात कहने में कुछ झिझक भी गया। सुमन, हमारा अभी जाना ज़रूरी है क्या? पहले ही शादी में इतना खर्चा हुआ है, काम का भी बहुत नुकसान हुआ है, इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अभी कुछ ठीक नहीं है, कुछ वक्त बाद चलते हैं ना घूमने। ये सुनते ही सुमन के चेहरे के भाव बदल गए और वो कमर पर हाथ धरे उसे नाराज़गी से घूरने लगी। जब शादी अभी हुई है तो हनीमून पर क्या अगले साल जाएंगे? सब कुछ अरेंजमेंट तो भैया ने कर ही दिया है, फिर तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है? जब शादी के लिए छुट्टी ली थी तो अब मेरे लिए कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले सकते? और तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक क्यों नहीं है? मेरे पापा ने दहेज में लाखों रुपए तो दिए थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तो अभी ही हनीमून पर जाऊँगी और तुम्हारी ही साथ जाऊँगी। अब सब कैसे मैनेज करोगे सो तुम जानो। एक तो वैसे ही तुम शादी के बाद मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गए हो, और न ही खुद से मुझे कहीं लेकर जाने का तुम्हारा कोई इरादा था। जब मेरे भाई ने हमारा हनीमून प्लान कर दिया है तो इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मुझे हनीमून पर जाना है मतलब जाना है। अगर तुमने मना किया तो मैं तुमसे रूठकर वापस अपने घर चली जाऊंगी। माधव को धमकी देने के बाद सुमन मुंह ऐंठते हुए बाथरूम में चली गई और माधव खामोश खड़ा बस उसे देखता ही रह गया। टू बी कंटिन्यूड।